ब जैन दर्शन जीव और अजीव तत्व। सामान्य जगत के पदार्थों को जैन धर्म में द्रव्य के नाम से पुकारा गया है। इसको निम्न दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। एक, जीव जो चैतन्य स्वरूप है या जिसकी चैतन्य तत्व की संज्ञा है। दो, अजीव जो अचेतन या भौतिक तत्व का नाम है। एक जीव अन्य दर्शनों में आत्मा के समान ही जैन धर्म में जीव की परिभाषा की गई है। चेतन द्रव्य को जैन धर्म में जीव कहा गया है। चैतन्य ही जीव का सामान्य लक्षण बताया गया है। चेतना लक्षणो जीव। जैन धर्म का भौतिक तत्व या सांसारिक बंधन से आवृत होने पर जीव का यह लक्षण विनष्ट नहीं होता है। जीव का प्रमुख गुण व्यवहार है जो भौतिक माध्यम से व्यक्त होता है। जैन धर्म में जीव असंख्य बतलाए गए हैं तथा उनकी विशुद्ध अवस्था एक जैसी बताई गई है। प्रत्येक जीव नैसर्गिक रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य आदि गुणों से संपन्न माना गया है, परंतु जीवों के आवरणीय कर्मों के कारण इन स्वाभाविक धर्मों का उदय होना स्वीकार नहीं किया गया है। जीवों में सिद्ध आत्माओं का ज्ञान सर्वोपरि है। चैतन्य जीव का प्रमुख गुण है। व्यवहार में इस चैतन्य जीव की पहचान पांच इंद्रियों, मन, वचन या काया रूप तीनों बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन दस प्राण रूप लक्षणों की सत्ता के द्वारा की जा सकती है। पंचवी इंद्रिय पाणा मन वच कायेसु तिष्णी बल पाणा आड़प पाड़प पाड़ा आउ गपाड़ेण होती दस पाणा। जैन धर्म में जीव के अनेक गुण स्वीकार किए गए हैं। इसमें कर्म करने की शक्ति और उपभोग की क्षमता होती है। जैन दर्शन में अमूर्त माना गया है तथा वह भी कहा गया है कि वह अपने रहने वाले शरीर के अंग प्रत्यंगों को प्रभावित करता है। जीवो उव ओगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो मुत्तोसो विश्वसों गढ़ई। इस प्रकार जीवों की संख्या अनंत मानी गई है। प्रत्येक शरीर में जीव विद्यमान है। उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। चाहे वह संसार में रहे या मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो जाए, उनका किसी भी अवस्था में विनाश नहीं होता। जीव संबंधी जैन विचारधारा वेदांत दर्शन से भिन्न है। वेदांत के अनुसार ब्रह्म एक है और उसका दृश्यमान अनेकत्व सत्य नहीं माना जाता है। जैन दर्शन संसार में रहने वाले जीवों को दो वर्गों में विभक्त करता है, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक जीव हरेक शरीर में एक एक रहता है एवं इंद्रियों के भेद से पांच प्रकार के होते हैं। एकेंद्री जीव में एकमात्र स्पर्शेंद्री होती है। इनके भी पांच भेद हैं। स्पर्श और रचना युक्त जीवों को द्विवेंद्री, स्पर्श रचना और घ्राण वाले त्रि इंद्रिय, स्पर्श रचना घ्राण के साथ साथ नेत्र युक्त प्राणी चतुरेंद्रिय तथा चार के अतिरिक्त श्रोतेंद्रिय सहित जीव पंचेंद्रिय कहे गए हैं। एकेंद्रीय जीवों को स्थावर और सब जीवों को त्रस की संज्ञा दी गई है। इन शरीरधारी समस्त प्राणियों में आहार, श्वासोच्छ्वास आदि जीवन क्रियाएं सामान्य होती हैं। ऐसे सामान्य शरीर को जैन दर्शन में निगोद कहा गया है। प्रत्येक निगोद में एक साथ जीने व मरने वाले जीवों की संख्या अनंत है। एक निगोद शरीरे विधि ढकालेण। इन पंचेंद्रिय जीवों के भी दो भेद बताए गए हैं, संगी मन सहित और दूसरे असंगी मन रहित। जैन धर्म में समस्त संसारी दृश्यमान जीवों को की दो गतियां मानी गई हैं, एक मनुष्य गति और दूसरी अन्य प्राणियों की तिर्यक गति। दो और गतियां हैं, एक देव गति और दूसरी नरक गति। मनुष्य और तिर्यक गति वाले जीव अपने कर्मों का सुफल भोगने के लिए देव गति प्राप्त करते हैं और दुष्कर्मों का दंड भोगने के लिए पापी नरक गति में जाते हैं। जो जीव पुण्य और पाप दोनों से रहित निष्प्रिय रूप से केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह संसार की इन चारों गतियों के बंधन में नहीं बंधता, वह सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। मनुष्य और तिर्यकों का शरीर स्थूल होता है, जिसमें उसके जीवन के भीतर कोई परिवर्तन संभव नहीं होता, किंतु देवों और नरकवासी जीवों के शरीर में नाना प्रकार का भी परिवर्तन संभव है। इनके जीवों के दो और शरीर होते हैं, तेजस और कर्मण, ये सभी में सदैव विद्यमान रहते हैं। मरण के पश्चात भी जीव से इनका संग नहीं छूटता। तेजस शरीर जीव और पुद्गल प्रदेशों में संयोग स्थापित किए रहते हैं, तथा कर्मण शरीर को जीव निरंतर अपने मन वचन काय क्रिया के द्वारा संचित करता रहता है। इनके अतिरिक्त एक और माना गया है आहारक शरीर, इसे रिद्धिधारी मुनि अपनी शंकाओं के निवारणार्थ विशेष ज्ञानियों के पास जाने के लिए अथवा तीर्थ वंदना के लिए करते हैं। शरीरधारी कर्मानुसार भिन्न भिन्न लिंगों के होते हैं, एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक के तिर्यक एवं नारकी जीव ही नपुंसक होते हैं, पर देवता नपुंसक नहीं होते। उनमें देव एवं देवियों देवियां दो ही भेद होते हैं। जीवों के जन्म भी नाना प्रकार के होते हैं, गर्भ से या संमूर्धन से। जो प्राणी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं वे गर्भज हैं, और जब गर्भ के बिना बाहरी संयोगों की अवस्थाओं में जीवों की उत्पत्ति होती है तो वह संमूर्छन कहा जाता है। देव और नारकीय जीवों की उत्पत्ति से भिन्न उपपाद रूप बताई गई है। दो, आजीव तत्व। जैन दर्शन में अचेतन या भौतिक तत्वों को आजीव कहा गया है। अजीव द्रव्यों के जैन धर्म में नीम पांच भेद हैं, एक पुद्गल, दो धर्म, तीन अधर्म, चार आकाश, पांच काल। एक, पुद्गल। सर्व दर्शन संग्रह में पुद्गल की परिभाषा किया गया है, पूर्यंती गलंती च, अर्थात पुद्गल वह है जिसका संयोग और विभाजन हो सके। जैन दर्शन में जड़त्व को पुद्गल कहा गया है। डॉक्टर हीरालाल जैन रूपवान द्रव्य को पुद्गलम स्वीकार करते हैं। जैन धर्म में विश्व के सभी मूर्तिमान दृश्यमान पदार्थ को पुद्गल द्रव्य के विभिन्न रूपों में स्वीकार किया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व तथा जीवों और मनुष्यों के शरीर सभी पुद्गल ही माने गए हैं। पुद्गल का विशाल रूप पर्वत आदि है तो उसका सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, जो अत्यंत लघु होने के कारण दिखाई नहीं देता। अनेक परमाणुओं के संयोग से उनमें परमाणु की उत्पत्ति मानी गई है, तथा उनमें स्पर्श, रस, गंध व वर्ण, ये चार गुण हैं जो इंद्रिय ग्राह्य होते हैं। शब्द, गंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, अंधकार, छाया व प्रकाश, ये सब पुद्गल के विकार माने गए हैं। पुद्गलों का स्थूल रूप महान पर्वतों तथा पृथ्वी का रूप या पृथ्वी के रूप में दिखाई देता है। इनसे लेकर सूक्ष्मतम पुद्गल द्रव्य के असंख्य भेद और रूप माने गए हैं। पुद्गल का भेद और पारस्परिक संबंध बराबर होता रहता है। इसी पूर्ण संयोग व गलन विभाजन के कारण इसका नाम पुद्गल है। पुद्गल शब्द का उपयोग जैन ग्रंथों के अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथों में भी पाया जाता है, किंतु वहाँ इसका अर्थ केवल शरीरी जीवों से है। पर डॉक्टर जैन का मत है कि जैन धर्म में अचेतन जड़ पदार्थों के लिए पुद्गल शब्द का प्रयोग नहीं पाया जाता। दो, धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों के स्थानांतरण रूप गमनागमन का माध्यम माना गया है। इसे जैन धर्म में अरूपी और समस्त लोक में व्याप्त माना गया है। इसी द्रव्य की स्थिति के कारण जीवों व पुद्गलों का एक स्थान से दूसरे स्थान में चलना संभव होता है। मछली के लिए जिस प्रकार जल सहायक कारण है, उसी प्रकार जैन धर्म में जीव इनकी गति के लिए धर्म की कल्पना की गई है। जन्म जीव की गति की प्रेरणा में असमर्थ होकर भी उसकी गति के लिए सहायक होता है। जैन दर्शन में धर्म की यह कल्पना अन्य दर्शनों में नहीं है। जैन धर्म में धर्म शब्द का प्रयोग शास्त्रीय है। यहाँ नैतिक आचरण आदि का अर्थ धर्म से लेना भ्रामक है। तीन, अधर्म द्रव्य। इसकी कल्पना धर्म के ठीक विपरीत है। धर्म द्रव्य जहाँ जीव और पुद्गलों के गमनागमन में सहायक है, वहीं अधर्म द्रव्य चलायमान पदार्थ को रोकने में सहायक होता है। जैसे कि वृक्ष की छाया में थका राही रुकने के लिए बाध्य होता है। चार, आकाश द्रव्य। सभी द्रव्यों को अवकाश प्रदान करने वाले को आकाश द्रव्य कहा जाता है। आकाश निशिम और अनंत है। इसकी सत्ता प्रत्यक्ष न होकर अनुमान पर अवलंबित है। जीव पुद्गल धर्म तथा अधर्म पदार्थ बहु प्रदेश व्यापी है, अतः उनके विस्तार की सिद्धि के लिए प्रदेश पर्याय वाले आकाश द्रव्य की सत्ता मानना न्याय संगत है। जितने आकाश में जीवादि अन्य द्रव्यों की सत्ता है वह लोकाकाश कहलाता है, वह सीमित है। इसके बाद जो अनंत शुद्ध आकाश है वही आलोक का आकाश है। उसमें अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वहाँ गमनागमन के साधन धर्म द्रव्य का अभाव है। डॉक्टर जैन के अनुसार आकाश द्रव्य का अस्तित्व सभी दर्शनों तथा आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है, किंतु धर्म और द्रव्यों की कल्पना जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। 5. द्रव्य काल। जैन धर्म में पदार्थों की स्थिति की कल्पना के लिए काल द्रव्य की कल्पना की गई है। काल की कल्पना अनुमान के आधार पर मानी गई है। जगत के समस्त द्रव्य परिणामशील कहे गए हैं। इस परिणाम के साधारण कारण के रूप में काल की सत्ता मानी गई है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व तथा अपरत्व ये काल के 5 उपकार माने गए हैं। काल के अभाव में पदार्थ की अनेक क्षण व्यापी अवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। काल के अवयवों को बिना माने स्थिति की कल्पना निराधार ही है। किसी वस्तु का परिणाम काल की सत्ता पर ही अवलंबित है। कच्चे केला का पक जाना काल जन्य ही है। ज्येष्ठता तथा कनिष्ठता की कल्पना काल का प्रमाण बताती है। लोकाकाष्ठ के एक एक प्रदेश में अणुरूप काल की सत्ता रत्नों की राशि के समान मानी जाती है। रत्नों के ढेर में जिस प्रकार प्रत्येक रत्न पृथक रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश में काल अणुरूप से पृथक पृथक स्थित रहते हैं। द्रव्य संग्रह में काल के 2 भेद माने गए हैं, अव्यवहारिक काल व परमार्थिक काल या निश्चय काल। अव्यवहार काल द्रव्यों के परिणाम से अनुमित दंड पल आदि अवयव से संपन्न काल को व्यवहार या व्यवहारिक काल कहा गया है। 2. ब परमार्थिक काल या निश्चय काल। यह काल अपनी द्रव्यात्मक सत्ता रखता है और वह धर्म और अधर्म द्रव्यों के समान समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। यह काल नित्य निर्वयव माना जाता है। वर्तना पदार्थ की स्थिति इनका सामान्य लक्षण है। यह सतत विद्यमान रहता है।